ले जाओ ले जाओ, बस ये
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले तो यहाँ पर जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अब ये चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार आत्मा का अलग अलग अस्तित्व है, तो जितने भी जीव आत्मा एक व्यष्टि आत्मा है, तो ये तो विचार जो धारणा है कि लोगों का कुछ ऐसी आध्यात्मिकवादी लोगों का ऐसा धारणा है जो तथाकथित नाम के आध्यात्मिक है, तो वो लोग ये धारणा रखते हैं कि ये आत्मा जब इस देह से निकल जाता है तो मोक्ष की गति को जब प्राप्त करता है तो बन जाता है एक आत्मा, यानी कि आत्मा दूसरी आत्मा से मिलकर बन जाता है एक आत्मा। और उदाहरण क्या रहते हैं ज्योति का, जिस प्रकार एक ज्योति दूसरे ज्योति में मिश्रण होकर बन जाता है एक ज्योति, ठीक इसी तरह एक देह से निकला हुआ जो आत्मा है वो जब परमात्मा से जब मिलन करता है तो परमात्मा में विलीन हो जाता है और बन जाता है परमात्मा। तो इन लोगों के विषय में पहले हम चर्चा करेंगे कि इन लोगों का कहना क्या है, लेकिन यहां पर भगवान इन लोगों के बात को खंडन करते हैं। क्या कहते हैं कि भूतकाल में भी हमारा अस्तित्व था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी हमारा अस्तित्व बना रहेगा, यानी कि देह छूटने के बाद हम अपने अस्तित्व को नहीं खोएंगे, हमारा अस्तित्व बना रहेगा। तो ये जो श्लोक जो है, इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि हर जीवात्मा एक व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि आत्मा समझते हो, व्यष्टि आत्मा, व्यष्टि आत्मा यानी कि हर आत्मा का अपना अपना एक पहचान है, या अंग्रेजी में कह दिया जाए इंडिविजुअल आइडेंटिटी, हर आत्मा का अपना एक अस्तित्व है। तो वैसे ही जीव आत्मा जब देह को छोड़ता है तो ये गलत धारणा है कि यही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है तो बन जाता है परमात्मा। अवस्थ अलग चलो देखिए क्या बात आवाज आप लोगों को किससे आना किसी को देता है तो वैसे ही जीव आत्मा अपना एक पहचान बनके बना के रखता है, लेकिन अब ये जो और मायावादी लोग, मायावादी जो है वो अपने तर्कों को पेश करते हुए ये बताते हैं कि किस प्रकार हम सब भगवान हैं। अब ये मायावादी लोग ऐसे आध्यात्मिकवादी लोग होते हैं जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं और कहते हैं कि मैं भगवान, तुम भगवान, हम सब भगवान। तो यहाँ क्या कर रहे, तो कहते हैं यहाँ पर मेरी दिव्य लीला चल रही है, तो उनको कहा जाए कि तुम यहाँ पर लीला क्यों नहीं, भगवान कभी कभी लीला करने आते हैं तो मैं भी लीला करने आया हूँ, और ये देह छोड़कर मैं भी भगवान बन जाऊंगा, आप भी भगवान हो, हम सब भगवान हैं। तो कभी कभी नए आए हुए व्यक्ति को कभी कभी बड़ा मिठास लगता है, अच्छा मुझे कल तक तो ऐसे लग रहा था कि मैं भगवान नहीं हूं, आज पहली बार पता लगा मैं भगवान हूं। तो कभी कभी उसके मन में हर्ष उल्लास की फव्वारे फूटने लगती है कि मैं भी भगवान हूं। और ऐसे ही व्यक्ति अपनी ही पूजा कराने लग जाता है, तो समाज में ऐसे भगवान की कमी नहीं है। श्री प्रभुपाद बताते कि ही लोग नहीं समझ पाते कि वास्तविक भगवान कौन है। बताते हैं कि जितने भी भगवान हैं ये सारे भगवान के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया है, और साथ में एक्सपोर्ट भी होता है और यहाँ से सभी लोग विदेश भी जाते हैं, अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। कलकत्ता में तो अमिताभ बच्चन का बड़ा पूजा होता है और कहते कि यही भगवान है। ओम जय जगदीश अमिताभ बच्चन हरे, उनकी आरती उठती है और उनको भगवान कहते हैं। जब रजनीकांत जब थिएटर में आता है तब लोग नारियल फोड़ते हैं कि आ गया हमारा भगवान। अब कैसे कैसे लोगों के मन में क्या क्या धारणा है, अब इन लोगों के विषय में चर्चा किया जाए तो केवल हमारा फिजूल का समय बर्बाद है। तो ऐसे मूर्खों के कम लिस्ट नहीं है और लोग उसके पीछे जाते भी हैं। तो कभी कभी लोगों को यह संशय भी हो जाता है कि देखो यहाँ वहां भीड़ तो ज्यादा दिख रहा है, ये हरे कृष्णा में भीड़ बड़ा कम दिख रहा है। तो कभी कभी कुछ लोग भीड़ भाड़ को देखकर वहां चले जाते, सोचते यही सच्चा भगवान है कलयुग में। दक्षिण भारत में एक व्यक्ति, साउथ इंडिया में एक व्यक्ति, एक 90 साल का बूढ़ा था, वो एकाएक वो कूट कर कहने लगा कि मैं लड्डू गोपाल हूँ, मैं लड्डू गोपाल हूँ, और ऐसे कहकर वो अपने घुटने में रेंगता हुआ चलने लगा, मैं लड्डू गोपाल हूँ, मैं लड्डू गोपाल हूँ। तो आड़ोस पड़ोस वाले ने देखा, रे लड्डू गोपाल का आदेश आ गया है। तो कई लोग उसे मक्खन खिलाए और इतना मक्खन खाया कि दूसरा दिन उसे डिसेंट्री हो गया और बेड पे भी लेटा है। तो वैसा जो ऐसे भगवान जो कहते हैं लेकिन अपने साधारण देव को नहीं सह पाते, तो हम कैसे कहेंगे कि ये तो भगवान जू में कैसी सत्य घटना घटा। जू में एक व्यक्ति आया था और वो आकर कहने लगा मैं भगवान हूं। तो मैंने कहा नहीं भैया, आप भगवान में भगवान अंदर है। बोला नहीं मैं भगवान, बोला जाओ जाके दर्शन करके आओ। एक गया काफी समय तक दर्शन करके, जब बाहर आया तो बाहर आते ही उन्होंने कहा अच्छा लघु शंकर के लिए क्या है। तो उन्होंने कहा अरे आप तो भगवान हो, तो कंट्रोल जो अंदर। बोला अरे भैया मजाक मत करो, जल्दी बताओ कहाँ है। बोला नहीं तुम तो भगवान है, तुम अपने आप को संयम करो ना। अरे भैया मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, अभी बताओ कहाँ है। बोला यहाँ से बाहर जाओ तो मिल जाएगा। तो जब वहां जाकर वापस आए तो फिर आकर कहने लगे मैं भगवान हूं। तो लोग एक साधारण छोटे से वेग को नहीं दे सकते तो काहे का भगवान। तो यहां पर इन लोगों को खंडन करने के लिए इस श्लोक को भगवान ने उच्चारण किया है। भगवद गीता के इस दूसरे श्लोक का जो शुरुआत का जो दूसरा श्लोक है, यहाँ पर भगवान ये सिद्ध कर रहे हैं कि हम सब एक जीव आत्मा है, हमारा सबका एक अलग अस्तित्व है। अब ये मायावादी लोगों का जो कहना है वो क्या है, वो ये है कि एक बहुत बड़ा एक आत्मा का जो गोला था उसमें से हम सब चितर बितर गए, तो उसी आत्मा के गोले से हम सब टूट गए और एक एक आत्मा बिखर गए और बिखर के एक एक शरीर को धारण कर लिया। और जब ये देह को छोड़ देंगे तो यही जो बिखरा हुआ जो आत्मा है सब मिलकर एक हो जाएगा और बन जाएगा परमात्मा। यानी कि हम उस आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाएगा। तो अब ये इनका ये कहना है कि आत्मा का खंडन किया गया, आत्मा को तोड़ा गया है। लेकिन क्या आत्मा को कभी कोई काट सकता है? भगवान भगवद गीता में बताते हैं नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दायति पावका न चैनम क्लेयन्ति अपुनः शोषन्ति मारुता। आत्मा को कभी किसी भी अस्त्र शस्त्र से काट नहीं सकते। तो प्रश्न यह उठता है कि वो तो बड़ा जो आत्मा है परमात्मा जिसको लोग कहते हैं उसको कैसे काटा, उसमें काट के इतने सारे में कैसे बिखर गए। तो अगर हम सब भगवान हैं तो भगवान के ऊपर अज्ञानता का पर्दा कैसे छाया, दूसरा प्रश्न है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अज्ञानता का माया का पर्दा भगवान से श्रेष्ठ है। तो यानी कि भगवान कैसे हुआ, तो ये जो सिद्धांत जो है, ये जो सिद्धांत में ये दावा करते हैं कि हम सब भगवान हैं, ये वास्तविकता में सरासर गलत सिद्धांत है। ये जो आत्मा जो है वो भगवान के अंश जरूर है लेकिन भगवान कभी नहीं है। जैसे लोहा, एक सोने का टुकड़ा सोना तो है, एक सोने का एक कण जो होता है वो सोना ही है, लेकिन वो जो सोने का जो कण है उसको हम सोने के घान जो जहां पर सोना प्राप्त होता है, जो बड़ा सोना है, उसके साथ हम तुलना नहीं कर सकते। गुणों में एक है, मात्राओं में भेद है। वैसे ही समुद्र के बूंद और समुद्र के बूंद में भी नमक है और समुद्र में भी नमक है, लेकिन नमक की जो मात्रा जो है उसमें भेद है। एक बूंद में जितना नमक प्राप्त होता है उतना कई मात्रा में समुद्र में प्राप्त होता है, क्योंकि मात्राओं में भेद है। उसी प्रकार ठीक इसी तरह भगवान जो कि असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमारी सीमा है। हम भूत के समान हैं तो भगवान विभू है, हम मनु है तो भगवान विभू है। भगवान उस सागर के साथ तुलना किया गया है। तो वैसे भगवान, हम सब ने जब भगवान के दिए हुए आदेश का अवहेलना किया तब तो हम यहाँ पर आगे पड़े, और इस कारण से अनेक अनेक प्रकार के देह को, 84 लाख योनियों को देह को प्राप्त करके भ्रमण करते हैं, और वही योनियों के हृदय के अंतर्गत वही शिरो दक्षाय विष्णु बैठ कर नित्यो नित्यानाम एक योग हो विदादि कामा, सबके हृदय की कामनाओं को पूर्ति करते हैं। तो जीव आत्मा इच्छा को प्रकट करते हैं या पेश करते हैं, और भगवान उस जीवात्माओं के प्रपोजल को सैंक्शन करते हैं। तो उनके इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए परमात्मा उसे बल देते, शक्ति देते हैं। तो वैसे ही आत्मा जो है वो भगवान के अधीन है, इसलिए हमें कहा गया आत्मा और भगवान को कहा गया परमात्मा। तो परमात्मा यानी कि जो ये तीनों गुणों से परे हैं, लेकिन हम नहीं हैं, हम ये तीनों गुणों के अंतर्गत हैं। इसलिए हमारे ऊपर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को हमें झेलना पड़ता है, लेकिन भगवान इससे परे हैं। तो भगवान के जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आता है, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। एक बार श्री प्रभुपाद को कोई कहने लगा कि प्रभुपाद स्वामी जी आप भगवान हो, तो प्रभुपाद अपने गाल को, चमड़ी को दिखाकर इंगित करने लगे, देखो मैं बूढ़ा हो गया, भगवान अभी भी युवक है, कितने नौजवान दिख रहे। तब उन्होंने कहा नहीं नहीं स्वामी जी आप ही भगवान हो। प्रभुपाद फिर कहने लगा देखो मेरे दांत टूट गए, नकली दांत लगाया, लेकिन भगवान जो कि कुरुक्षेत्र के उत्सव में 125 साल के होने के बाद भी भगवान केवल 16 साल 15 साल के युवक दिख रहे हैं। तो यह है भगवान। जबकि अर्जुन भगवान से छोटे थे तो भी अर्जुन को मुच्छी आ गया था, लेकिन भगवान को नहीं आया। तो भगवान अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्य पुरारुषम नवयौवनम च वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त गोविंदमान पुरुषम तम हम भजामि। भगवान को कहा गया अद्वैतम, अद्वैतम यानी कि जो दो नहीं है एक है, अद्वैतम, तो भगवान एक ही है, लेकिन हम द्वैतम है। हमारा कैसे द्वैतम है? क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर और आत्मा में भेद है, इसलिए हमें द्वैत कहा गया। लेकिन भगवान और भगवान के शरीर में कोई भेद नहीं, इसलिए कहा गया अद्वैतम। अच्युतम, भगवान को दूसरा नाम संबोधित किया अच्युतम, जो कभी नहीं गिरते, जो अपने स्तर को हमेशा बना के रखते हैं। भगवान यहाँ पर रणभूमि के क्षेत्र में, जहाँ पर भगवान एक रथ को, जो कि अर्जुन के रथ को हाँकने के लिए ड्राइवर बन गए, तो भले ही भगवान एक ड्राइवर का रोल अदा कर रहे, लेकिन तट पर भी भगवान भगवान है। भगवान अपने स्तर से कभी नहीं गिरते, चाहे भगवान कुछ भी क्यों ना करे। अगर वो माखन भी चुराता है तो वो माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। अब जैसे कि कोई अगर बहुत बड़ा लक्ष्मीपति है और उसका आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, अगर वो मंच पर खड़ा हो गया और आप उनके परिचय के विषय में बता रहे कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो हमारे समक्ष खड़े हैं, ये मुंबई का सबसे बड़ा व्यापारी है, इसके बहुत ज्यादा करोड़ों में इसका मुनाफा होगा, हर महीने में करोड़ों की संख्या में मुनाफा होगा। अब लेकिन हाँ, बाय द वे, ये पेंसिल चोर भी है, बचपन में कुछ पेंसिल चोरी करता होगा, तो उसने ये भी कह दिया पेंसिल चोर भी है। अब जब ये किसी को अगर कह दिया जाए, उसे अच्छा लगे, अरे मेरा स्तुति हो रहा है, निंदा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो व्यक्ति को पसंद नहीं आएगा। लेकिन भगवान जो कि पूरे लक्ष्मीवान लक्ष्मीपति होने के बाद भी अगर उसे माखन चोर भी कहते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाए। तो भगवान के किसी भी प्रकार के क्रिया क्यों ना हो, सारे भगवान के किसी भी प्रकार के कर्तव्य क्यों ना हो, वो सभी कुछ पूजनीय है। तो इसे कहते हैं भगवान। भगवान ने पराए स्त्रियों के साथ रासलीला खेला, तो कोई ये नहीं सोच सकता है कि ठीक है मैं एक ही क्यों दो क्यों नहीं रखू, ये नहीं सोच सकता। अगर ये सोचेगा तो फिर वो निंदनीय माना जाएगा। लेकिन भगवान के लिए कोई नियम नहीं है, इस बियॉन्ड दिस रूल्स एंड रेगुलेशन, इसलिए तो वो भगवान है। तो वैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जब इस धरातल में आते हैं, तो वो किसी भी प्रकार की क्रिया करते तो भी वो अच्युत है। लेकिन हमारी अवस्था क्या, अच्युत है, यानी कि हम अपने स्तर से गिर जाते हैं। वी हैव टेंडेंसी टू फॉल डाउन, ये हमारी अवस्था है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान किसी भी तरह भी आएंगे, एक वराह के रूप में भी आए तो भी वो पूजनीय माने गए हैं, वराह एक सुवर के रूप में भी आए तो भी वो पूजनीय है। वैसे अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान के एक नहीं अनंत रूप है, एक कोई ऐसे नहीं कि केवल कृष्ण ही, ऐसे भगवान ने अनंत रूप को धारण किया है। जिस प्रकार हम तारे को नहीं गिन सकते, वैसे भगवान के अनंत रूप है, जिसको हम अपने छोटी बुद्धि से नहीं गिन सकते। बताया जाता है कि कोई व्यक्ति, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति समुद्र को शाही बनाकर, बालू को कलम बनाकर, वो भगवान के अनेक अनेक इतिहास लिख भी सकता है, लेकिन ये नहीं लिख सकता है कि भगवान के गुण कितने हैं, वो भी कम पड़ेगा। भले कोई बालू के रेत को भी क्यों ना गिन ले, तारे को भी क्यों ना गिन ले, लेकिन भगवान के अवतार को नहीं गिन सकते। ऐसे बहुत भगवान के अनंत अवतार है, अनंत रूपम। एक बार की बात थी कि जब वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण जब माखन चोरी कर रहे थे तो सारे गोपियां जब परेशान होकर उन्होंने जाकर जब यशोदा मैया को कंप्लेंट किया कि मैया देखो तुम्हारा लड़का हमारे घर पर आके माखन चोरी करता है, आप कुछ करो। तो मैया ने कहा कि ठीक है मैं, लेकिन इतना मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे आप रंगे हाथ से पकड़ के दिखाओ तब मैं उसको अच्छी तरह सिलाई करूंगी। बोला ठीक है। तो हुआ यूं कि अब भगवान को पकड़ने के लिए इन्होंने एक चाल रचा, और वो चाल क्या रचा कि जैसे ही भगवान मटकी चोरी करने आएंगे तब वो मटकी को छूते ही घंटी बजे, ऐसा उन्होंने सिस्टम बांध के रखा था रस्सी के साथ घंटी को। तो अब यहां पर कृष्ण को भी नहीं पता, सारे ग्वाल ग्वाल आ गए चोरी करने माखन, अब जब चोरी करने आए तो एक के ऊपर एक चढ़कर जब देखा, जब कृष्ण जैसी मटकी को हाथ लगाने गए तुरंत उनका नजर गया रस्सी पर, और रस्सी को देखा वो सीधा कनेक्ट है सीधे घंटी में, मटकी को हिला उनको घंटी बजेगा ये पक्का है। अब कृष्ण ने वहां देख लिया। अब वही तो बाल गोपाल कृष्ण ने जब देखा तो उन्होंने घंटी को आदेश दिया, ए घंटी बजना मत, मैं माखन दूंगा बजना मत, अब यहाँ भगवान के आज्ञा का तो सब पालन कर। तो अब घंटी भी थर थर कांपके कह दिया हाँ स्वामी जी मैं नहीं बजूंगा। अब यहाँ पर कृष्ण ने माखन के मटकी को निकाला, अब जब निकाला और निकाल के हाथ डुबा के जब वो खाने गया तो घंटी बजना शुरू, टन 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 बजना शुरू। अब तो सभी बार बार सब भाग गए, अब यहाँ पर कृष्ण और हाथ में मटकी, सब गोपियां लोग पकड़ लिए चारों तरफ, और जब गोपियों के झुंड में जब देख लिया अपने आप को कृष्ण ने तो पहला घूर कर देखा घंटी को, तो कहा था ना बजना मत फिर क्यों बजा। तब घंटी का ये आदेश था कि हे स्वामी जी जब ठाकुर जी को भोग लगेगा तो मैं कैसे नहीं बजूंगी, मेरा काम ही भोगना। तो यहाँ पर कृष्ण जब माखन खा रहे थे तो जब ठाकुर जी भोग खा रहे तो घंटी बजेगा, तो घंटी ने अपना काम किया। अब घंटी भी दोषी नहीं है, अब करे क्या। अब वहां पर प्रभावती गोपी ने कृष्ण को पकड़ लिया, मतलब बस आज मैं तुम्हें बांध कर लेकर जाऊंगी, और उन्होंने कृष्ण को बांध कर लेकर गए सीधे यशोदा मैया के पास। चलो आज तुम्हारी बराबर खबर लगी है, मैया कहती है कि मेरा लड़का बड़ा सीधा है, हमारे घर में माखन की कमी नहीं है, तुम इधर चोरी नहीं करेंगे, आज पता चल जाएगा। और यह बहुत कृष्ण निवेदन किए कि कृपा करके मत बोलो मत बोलो, लेकिन नहीं, वो तो बस अब उसका हाथ पकड़ कर खींच कर लेकर जा रही है, बस आगे आगे देख रही है और लेकर जा रही है, और सीधा घर के अंदर घुस गया, कहने लगे ए मैया देखो तुम्हारा लाला तो आज मैं बड़े रंगे हाथ से पकड़ी हूं। तो यहाँ पर प्रभावती गोपी ने कृष्ण को पकड़ के लाए थे। तो मैया जब आई तो उन्होंने देखा प्रभावती गोपी बड़ी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है तुम्हारे लड़के को पकड़ी हूं तुम्हारे लड़के को। तो यशोदा मैया भी देखकर वो कहने लगी कि हे प्रभावती शायद तुम दिन भर काम करके थक चुकी हो, शायद तुम्हारा दिमाग में शांति या चैन नहीं मिला होगा, मैं चाहती हूँ तुम थोड़ा बैठ जाओ, मैं लस्सी वगैरह पिलाती हूँ फिर सब पता लग जाएगा। बोला मैंने पहले तुम तुम्हारे लड़के को सुता दो। बोला अरे प्रभावती तुम जिसको पकड़ के लाई हो मेरा लड़का नहीं तुम्हारा लड़का है, तो देख रहे अरे ये मेरा लड़का कैसे हो गया, अभी तो कृष्ण था और वो भी चक्रों में आ रहे, तो विचार करने लगी अरे ये ऐसे कैसे हो गया, मैं तो वहां से मेरे मेरे लड़के को तो नहीं कृष्ण को लेकर आई थी। फिर वो सोचने लगी उसको जरूर गड़बड़ है, वो पापा वहां से कह रहे लस्सी तो पीते नहीं ना, मुझे लस्सी नहीं पीना, मैं तेरा जा रही हूँ अभी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब वहां से जब निकली वापस आधे रास्ते में पहुंची तो वापस कृष्ण प्रकट हो गया, तू वापस आ गया। तो बोला क्यों प्रभावती को भी कहता रहा, बस मैं कई बार मना किया ना मुझे वापस लेकर जा। तो ये तो देख कर ये तो बहुत चक्का हो गई। फिर कृष्ण कहने लगा देख दोबारा लेकर जाओगे ना, इस बार तो तुम्हारे लड़के का रुक लिया, आपकी बार तुम्हारे पति का रुक रुका तो ज्यादा ही बदनामी हो जाएगा, तो दोबारा सावधान। अब कृष्ण के सामने गोपी का क्या चले। तो ऐसे वही भगवान जो कि एक भगवान अद्वैतम अनंत रूपम अनंत रूप धारण करते हैं, अपनी लीला करते हैं, अद्वैत मनाति अनंत रूपम आद्यम, वही भगवान आदि है जिसका कोई शुरू नहीं है और कोई अंत नहीं है, जो सबसे पहले जो पुरुष है वो है कृष्ण आद्यम। पुराण पुराण यानी कि पुरातन है, पुरुषम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, एकदम युवावस्था में है। तो वैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंदमादि पुरुषम तम हम जाने। तो उस भगवान के विषय में बताया गया है कि भगवान एक स्वरूप धारण या भगवान का एक सुंदर स्वरूप है श्याम सुंदरम, लेकिन यहां पर जो आध्यात्मिक वादियों का ये कहना है कि भगवान निराकार है, भगवान के पास कोई आकार नहीं, ऐसे तथाकथित मायावादी लोगों का ये कहना है। मायावादी कहते हैं भगवान निराकार है, हम सब भी निराकार हैं, निराकार निराकार में मिश्रण बनकर हो जाते निराकार। तो ये निर्गुण यानी कि नील आकार के रूप में इन लोग भगवान को ऐसे कहते हैं कि भगवान के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद इसी टर्म को लेकर कहते हैं हाउ कैन गॉड बी अ नॉनसेंस, बिना इंद्रियों वाला भगवान कैसे हो सकता है, बिना भगवान कैसे कह सकते कि भगवान अंधे हैं, बहरे हैं, कह सकते भगवान गूंगे हैं, भगवान कुछ खाते नहीं है, नहीं। ये जो कहना जो है कि भगवान के पास आकार नहीं है, ये वास्तविकता में ये गलत सिद्धांत है, ये छल धर्म है। लोगों को छल करने के लिए इस धर्म को लोग पालते हैं, जिसको लोग कहते हैं ओम शांति। तो उनका उद्देश्य क्या है, किसी को इस प्रकार ध्यान लगाओ और अपने आप में ध्यान लगाते लगाते पूरी तरह ओम शांति बस शांत हो जाओ और क्या हो जाओ, उस भगवान में विलीन हो जाओ और बन जाओ कोई भगवान। अब इसके पीछे कोई सिद्धांत नहीं दिखता है, वास्तविकता में कोई अगर भक्त सुनेगा तो उसके लिए हंसी के अलावा और कोई बात नहीं है। ये सबसे बड़ी मूर्खता पूर्वक प्रस्ताव है कि कहते कि हम सब ज्योति हैं, आप ज्योति हम सब ज्योति। अरे लाइट बंद करो पता लगेगा कितना ज्योति है। तो ये जो वास्तविक बहन ये जो प्रस्ताव है लोगों का कि हम सब निराकार है, और क्या करते इन लोग, ये लोग अपने आध्यात्मिक मार्ग में ध्यान लगाते हैं। तो क्या कहते हैं, मेडिटेशन, मेडिटेट करना है। किस पे मेडिटेट करना है, ऐसे वस्तु पर, ऐसे वस्तु पर ध्यान लगाना है जो कि निराकार है। अब निराकार यानी कि क्या, भगवान को कभी, जो कि जिसके पास कोई रूप ही नहीं है। अभी कोई बिना रूप वाला वस्तु को कोई ध्यान लगा सकता है क्या? आप किसी ऐसे वस्तु पर ध्यान लगा सकते हो जिसको आपने कभी नहीं देखा, जिसको आपने कभी नहीं देखा वो वस्तु पर आप कभी ध्यान लगा सकते हैं। तो इन लोग कहते हैं कि ध्यान लगाओ, ध्यान लगाने में क्या करो, कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, ये भी एक सोच है ना, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, ये कैसे हो सकता है? बिना सोच कर व्यक्ति रह कैसे सकता है? हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सोचना है, कुछ नहीं सोचना, ये भी एक सोच है। तो ये जो कहना, ये जो प्रस्ताव जो है लोगों तो लोगों का, कि हम ऐसे कुछ नहीं सोचकर हम फ्रेश हो जाते हैं, लोगों का ऐसा कहना है। इसलिए लोग जिसके ऊपर कहते हैं कि हाँ सही बात है, हम लोग 2 घंटा आग बंद करके सो के बाहर आते तो फ्रेश नहीं कहते। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ब्लैंक मेडिटेशन इज बोगस, इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस युगा। ये जो केवल निराकार में व्यक्ति ध्यान लगाने का जो विचार है सबसे सरासर गलत विचार है और ये कभी संभव नहीं है। तो ये जो भगवान के ऊपर ध्यान लगाने के विषय में जो चर्चा जो है, ये मायावादी लोगों का जो प्रस्ताव है कहां से आया? आदि शंकराचार्य से। आदि शंकराचार्य ने इस ग्रंथ की रचना की, जिसमें आदि शंकराचार्य बताते हैं मायावादम असत शास्त्रम प्रचन्न बोधम उच्चते मैव विहितम लेरी कलो ब्राह्मण मूर्तिना। अब महादेव पार्वती को कहते हुए समझाते हैं कि मायावादम असत शास्त्र, मायावादी का झूठा शास्त्र प्रचन्नम बोधम उच्चते, मैं उस मायावादी के सिद्धांत को रचना करने के लिए मैं स्वयं प्रकट होता हूं और क्या करता हूं, असत शास्त्र जो झूठा है और क्या बताऊंगा, भगवान निराकार है। तो स्वयं आदि शंकराचार्य आकर लोगों को यह बता रहे कि भगवान निराकार है, निराकार में भजन करो, ध्यान लगाओ। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर महादेव स्वयं अगर ऐसे लोगों को दिन प्रवृत्त करेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसे नहीं, महादेव ने ऐसे झूठा शास्त्र क्यों लिखा? तो महादेव ने ऐसे शास्त्र को लिखे क्यों? क्योंकि महादेव ये चाहते हैं कि जो भगवान का भजन करते हैं वो भगवान के भजन करने वाले लोगों को रोक टोक ना हो। भगवान के भजन करने वाले व्यक्ति को ये निराकारवादी व्यक्ति हमेशा रोक टोक लगाते थे और क्या कहते थे, और ये कहते थे कि भगवान नहीं है क्यों पूछते हो, और इस प्रकार भक्तों को परेशान करते थे। इसलिए भगवान के आदेश को सुनकर महादेव ने ये मायावाद का सिद्धांत लिखा और जितने भी नास्तिक है सभी नास्तिक यहाँ पर जाकर झूठ इकट्ठा होते और कहते कि भगवान निराकार है। तो जो भगवान को निराकार करके घोषित करता है वो सबसे बड़ा नास्तिक है। अब कैसे इसको समझा सकते हैं, वो कैसे नास्तिक है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भगवान के पास आकार ही नहीं है, भगवान के पास हाथ नहीं है, भगवान के पास पैर नहीं है, भगवान के पास मुखमंडल नहीं, यानी भगवान है ही नहीं। अंततः एक बार क्या है, भगवान है ही नहीं। जैसे कि एक बार एक राजा था, उसको एक हाथी बड़ा प्रिय था और वो इतने हाथी से प्रेम करता था कि उसने अपने बाकी जितने मिनिस्टर थे, उसके कुछ 12 मिनिस्टर थे, उसने अपने 12 मिनिस्टर को कहा कि देखो आज के बाद इस हाथी को हमेशा देख रेख करना और कभी ये खबर लाकर मत देना कि हाथी मर गया। और जो व्यक्ति ये खबर लाकर दिया हाथी मर गया, बस फिर उसका हरी बोल, फिर उसको सूली पे मैं चढ़ा दूंगा। अब सारे 12 जितने भी मिनिस्टर थे, सारे 12 मिनिस्टर उस हाथी को खूब रखवाली कर खूब अच्छी तरह देखते थे। अब हुआ ऐसे कि जैसे समय के काल के प्रभाव से ऐसा समय आया कि हाथी गुजर गया। अब हाथी गुजर गया तो 12 लोग ये चर्चा करने लगे कि जाएगा कौन, डॉक्टर सर मैं तुम जाओ मैं तुम जाओ। अब ये चर्चा में फिर एक मिनिस्टर थोड़ा बुद्धिमान तो बोला ठीक है मैं जाता हूँ। तो वो आए महाराज राजा के पास और राजा के पास जैसे आए तो राजा ने तुरंत पूछा हे मिनिस्टर बताइए कि मेरा हाथी कैसा है। तो मिनिस्टर ने कहा हाथी बहुत बकवास है। अच्छा कैसा है? बस ऐसे दोनों हाथ पैर रखकर ब्यू सोया है, हाथ पैर नहीं हिलाता बस ब्यू सोया। अरे हाथी है कैसा? अरे एकदम मस्त, कान भी नहीं होता एकदम स्थिर हो गया है काम। अरे है कैसा? अरे पेट भी नहीं होता, पेट एकदम स्थिर हो गया है एकदम बढ़िया सोया है। अरे मेरा हाथी कैसा? अरे हवा भी नहीं जा रहा उसके सूंड से एकदम मस्त सोया है। अरे आपका कहने का मतलब क्या हाथी मर गया? अरे मैंने नहीं, आपने ही बोला। अब ये बच्चा को ये सिद्ध करना था कि हाथी मर गया लेकिन कैसे बोले तो ऐसे बोला। तो वैसे ही ये जो मायावादी लोग कहते हैं भगवान भगवान के पास हाथ नहीं, भगवान भगवान के पास मुखमंडल नहीं है, भगवान भगवान के पास सर भी नहीं है। अरे भगवान, अरे भगवान है ही नहीं, सीधा बोलो ना, क्यों इतना घुमा घुमा के बात करते हैं। तो वो जो कहने के पीछे उपदेश क्या है कि भगवान नहीं है, जो कहते हैं कि भगवान के पास आंख नहीं है, कान नहीं है, मुख नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? डायरेक्ट बोलो भगवान नहीं है, क्यों इतना घुमा के? ऐसे ही अब मंत्री बोल रहा था हाथी हाथी बढ़िया सोया है, ये नहीं कह रहा हाथी मर गया है। वैसे मैं जितने भी निराकारवादी जो है जो ये दावा करते कि भगवान निराकार है वो सरासर सबसे बड़ा नास्तिक। वैसे नास्तिक सिद्धांत लिखने के लिए स्वयं महादेव आए और उन्होंने नास्तिक सिद्धांत की रचना की। तो क्यों किया? वो इसीलिए ताकि भक्त लोग भक्ति करते रहे। जैसे आप जैसे कभी कभी ऐसे आपने देखा होगा बिल्डर जब बिल्डिंग बनाता है तो वो बिल्डिंग बनाते समय बहुत सारे कबूतर उस पर आकर बैठकर अपना मल त्याग कर वो बिल्डिंग को खराब कर देते हैं। तो क्या करता है बिल्डर? थोड़ा अनुभवी बिल्डर जो होते हैं वो उसी कंस्ट्रक्शन के सामने एक दूसरा एक कबूतर खड़ा कर देता है, एक बाम्बू से बना हुआ, ताकि उसमें जितने भी उस कबूतर में जाके जितने भी कबूतर लोग मर जाके त्यागते रहे लेकिन ये बिल्डिंग सुरक्षित है। वैसे ही जो भगवान के दिए हुए जो दिव्य उपदेश है श्रीमद् भागवतम इत्यादि, ये भक्तों के लिए बड़ा रसमय किताब है और इसी को पढ़कर भक्त लोग आनंद विहोर आनंद में रहते हैं। और भक्त लोग ठीक से भक्ति कर सके, उनकी व्यवस्था उनका रास्ता क्लियर रहे, ऐसे भक्तों की व्यवस्था ठीक करने के लिए इन नास्तिक लोगों को, इन कबूतर रूपी नास्तिक लोगों को एकत्रित किया, ऐसा चबूतर बनाकर कि भगवान निराकार है। अब ये सारे जितने भी लोग ये कहते ये सिद्धांत को पढ़ते ये ग्रंथ को पढ़ते कि भगवान निराकार है, भगवान के पास हाथ पैर कुछ नहीं है, ये जितने भी लोग हैं ये सभी लोग वो कबूतर के समान है जो चबूतरों में जाकर मर जाए गए। और भक्त लोगों के लिए बड़ा अच्छा रास्ता खुल चुका है। तो वैसे इन मायावादी लोग जो अपने आप इस प्रकार जो भगवान खुद कहते हैं कि मैं भगवान है, तो इनके अंदर दो प्रकार की अज्ञानता है। एक अज्ञानता है कि मैं भगवान हूं और दूसरी अज्ञानता है कि कृष्ण साधारण व्यक्ति है। अभी आप देखिए जब आप स्वयं भगवान बोलते हो कि मैं भगवान हूं तो भगवान कृष्ण क्यों भगवान नहीं है? तो यानी कि वो लोग क्या कहते हैं? कृष्ण साधारण व्यक्ति, मैं भगवान हूं। अब कृष्ण कोई उसके पदवी से निकालकर खुद बैठना चाहता है? जब कृष्ण की बारी आई तो साधारण व्यक्ति, जब उसकी बारी आई तो मैं भगवान। तो ये जो इनका ये कहना है कि ब्रह्म सत्य जगत अनित्य, इन लोग कहते हैं जो जितने भी भौतिक संसार है सब मिथ्या है, और मिथ्या होने के कारण इस भौतिक संसार में जितने भी उदाहरण हैं वो कोई समझने वाली उदाहरण नहीं है, वो केवल बोगस उदाहरण है, उसके पीछे कोई वास्तविक प्रामाणिक इतिहास या उसको हम ठोस रूप में प्रमाण के रूप में नहीं कह सकते। क्यों कहते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इनका ये कहना। तो वैसे ये लोग भौतिक संसार को झूठ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सब भौतिक संसार झूठ है। ये कैसे झूठ हो सकता है? वैष्णव सिद्धांत के अनुसार ये भी कुछ समय के लिए सत्य है, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए ये भी सत्य है, क्योंकि एक पूर्ण सत्य से जो निकलता है वो भी सत्य होगा। एक सोने के टुकड़े से जो निकालेगा वो भी क्या रहेगा? सोना ही रहेगा, ऐसे थोड़ी बोलेगी कि वो लोखंड है। तो भगवान क्या है? परम सत्य है, पूर्ण सत्य है। तो ये सृष्टि कहाँ से आई है? भगवान से आई है। तो भगवान से जो आया हुआ जो सृष्टि हो, कैसे झूठ हो सकता है? तो ये अगर सृष्टि को आप झूठ कहते हो तो भगवान भी झूठ है कि नहीं? तो हम ये कैसे कह सकते? यानी कि सोने के टुकड़े से अगर लोखंड निकल रहा है तो इसका मतलब सोना शुद्ध नहीं है, कुछ गड़बड़ है। अगर परम सत्य से यह भौतिक संसार जो झूठ है ये निकलेगा, यानी कि उनमें कुछ गड़बड़ है कि नहीं? तो उनका कहना है कि यह भौतिक संसार झूठ है और ब्रह्म सत्य है। ये कैसे हो सकता? एक बार आदि शंकराचार्य अपने समस्त शिष्यों के साथ चलकर जंगल से जब गुजर रहे थे तो हुआ यूं कि एकाएक जंगली हाथी वहां पर आ गया और अपना ध्वनि लगाते हुए इधर उधर फाड़ने लगा, और जब फाड़ने लगा तब आदि शंकराचार्य भी भागे। अब शंकराचार्य एक पेड़ पर देख के चढ़ गए ऊपर, अब वो पेड़ पर देख कर किसी पेड़ में चढ़ गए तो शिष्य ने देखा गुरु तो भाग गए, हम भी भागते, तो उन लोग भी भागे। इधर उधर भागते हुए हाथी तो चला गया, फिर सब उतर गया। फिर शिष्य ने प्रश्न किया, गुरु जी अभी तो आप बता रहे थे कि ये भौतिक जगत सब झूठ है। बोला ये ब्रह्म सत्य जगत नित्य, जगत नित्य है। बोला सही बात है। तो ये जो हाथी आ रहा था वो भी तो झूठ था। बोला सही, तो फिर क्यों भागे? अब बड़ा जटिल प्रश्न पूछ लिया शंकराचार्य को। तो शंकराचार्य ने कहा, देखो शिष्य गणों, वो जो हाथी आ रहा था वो तो झूठ है, ये जगत पूरा झूठ है, क्योंकि वो हाथी आ रहा था वो भी झूठ है, और साथ में ये भी समझो कि मैं पेड़ पे चढ़ा वो भी झूठ है, तो कुछ सच नहीं है। तो यारे कि इसका जो दावा है कि जो तुम कर रहे हो सब झूठ है, फिर क्यों कर रहे हो भाई? तो वैसे ये मायावादी लोग जो भगवान को निराकार करके घोषित करते हैं, इसके पीछे कोई सामान्य बुद्धि नहीं दिखाई पड़ती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कॉमन सेंस है। इन लोगों के पीछे वास्तविक में कोई प्रमाण नहीं है, बस हवे में तीर मार रहे हैं। तो वैसे व्यक्ति क्या कहते हैं? इन लोग ये क्यों कहते हैं कि भगवान के धाम में केवल एक ज्योति और कुछ नहीं? इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि उन लोग अपने शरीर के आकार रूपी देहों को लेकर पीड़ाओं से पीड़ित हो चुके हैं, तो उस पीड़ा से पीड़ित होकर इन लोग अंत में ये दावा कर कहते हैं कि भगवान के धाम में कुछ नहीं है, सब कुछ निराकार है। तो उनका ये कहना है दुख कष्ट क्लेश के सारी समस्याओं का, दुख शोक मोह भय ये जितने भी हैं, ये सारी समस्या का मुख्य जड़ है आकार रूपी शरीर। इसलिए इस आकार रूपी शरीर का ही नाश कर दो फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं, सभी कुछ आनंद ही आनंद है। तो इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है कि आत्मा को हनन कर दो। इसलिए श्ल प्रभुपाद ईशोपनिषद में ये वर्णन करते हुए समझाते हैं, वास्तविकता में इन लोग दे आर डूइंग स्पिरिचुअली सुसाइड, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्महनन कर रहे हैं, यह आत्महत्या है। अपने ही आत्मा के आध्यात्मिक उन्नति का नाश कर रहे हैं। तो इसीलिए भक्तों को यह समझना चाहिए कि वास्तविकता हम में से कोई भगवान या स्वामी नहीं, हम सब सेवक हैं। भगवान एकमात्र स्वामी है और हम उनके सेवक हैं। कुछ एक तो साल पहले की बात है, मैं आपको बताऊंगा कि एक व्यक्ति जो था यहाँ मंदिर आने लगा था, तो मुझे जरा जल्दबाज में पहुंचना था मेरा रोड स्टेशन पे, तो इस बंदा ने कहा कि चलो प्रभु जी मैं छोड़ देता हूँ, तो उनके साथ मैं गाड़ी में बैठ गया। तब वो कहने लगा कि अपना इतिहास बताने लगा कि मैं भी जाता था ओम शांति में, और ये ओम शांति में जाता था लेकिन हमेशा परेशान रहता था, घर पर ऑफिस में हमेशा ऑफिस में लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन जब से हरे कृष्ण आने लगा तब से मेरा पूरा समस्या ही सुलझ गया। बोला ऐसे कैसे, क्या जरा आपका अनुभव हुआ जरा बताइए। मैंने पूछा तो वो कहने लगा, जब मैं ओम शांति में जाता था तो मैं ये सुनता था कि मैं भगवान हूँ, तो जब बार बार मैं सुनता था मैं भगवान हूँ भगवान हूँ, तो ऑफिस में जब मेरा कोई कहा नहीं मानता था तो मैं डांट देता था, तो मुझे चार बार डांटता था, बस ये चलता रहता था, दो दुगना तिगना ऐसे चलता रहता था, और तू मैं इतना हो जाता था कि मैं शांत नहीं होता था और ये रोज का रोज परेशानी। लेकिन जब से हरे कृष्णा मंदिर में आया तब मुझे पता लगा मैं भगवान नहीं, मैं दासानुदास हूँ। जब ये पढ़ाई सुना, ये जब मैं सुना, तब मेरा चित्त शांत हो गया। अब ऑफिस में कोई चार दस बार भी कुछ बोलता है तो मैं ये सोचता हूँ मैं दासानुदास हूँ, बोलना तो क्या गलत, सुनना क्या हमारा बुरा ही क्या है, और तब से सारा समस्या ही चल रही है, सारे मुख्य जड़ सारे समस्याओं का मुख्य जड़ क्या, अभिमान। और कोई अगर अपने आप को भगवान अगर घोषित करता है तो अभिमान कम कर रहा है क्या, बढ़ा रहा है, वो तो और जहर बढ़ा रहा है उसके अंदर। तो वैसे जहर को कम करने के लिए या उसका शमन करने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत के आश्रय को ग्रहण करना है और यह विचार रखना है कि मैं दासों का दास। जब कुछ भक्त लोग श्ल प्रभुपाद के कुछ शिष्य लोग वृंदावन में ये चर्चा कर रहे थे, मेरा नाम फलाना दास है, मेरा नाम फलाना, तुम्हारा नाम फलाना दास है और तुम्हारे नाम के अर्थ ये है, तब प्रभुपाद जैसे ही एंट्री मारे तो वो सुन रहे थे, सारे भक्त लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने पूछा है क्या हो रहा है, तब इन्होंने कहा स्वामी जी प्रभुपाद इनका नाम पुरुषोत्तम दास है, मेरा नाम परमात्मा दास है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, मेरा नाम इससे नाम से श्रेष्ठ। भगवान प्रभुपाद कहने लगे कोई भी नाम क्यों ना हो लेकिन नाम के बाद अंतिम नाम जरूर याद रखना हुआ दास, बाकी कुछ याद नहीं रहेगा चले जाएगा, दास हमेशा याद रखना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए सभी दीक्षा, इसलिए हमारे संप्रदाय में दीक्षा मिलने के बाद व्यक्ति का नाम अंत में क्या बनता है, दास। और जब कोई व्यक्ति नया नया व्यक्ति आता तो उसको कुछ नाम बताते तो नाम तो भूल जाता, दास याद रखता है, और जब दोबारा तो दास क्या, अरे दास तो सब है, कौन सा दास कहेगा, सभी दास के दास झूठ है, हमारा सरदेव भी वो है दास। तो वैसे जो नाम के बाद दास का जो नाम है वो अगर किसी ने रख लिया यार तो कोई समस्या नहीं। ऐसे एक व्यक्ति भजन कर रहा तो उसे कोई ऐसी निराकारवादी व्यक्ति मिल गया, तो कहने लगा मंत्र जप करो क्या, सोहम सोहम। तो रोज आठ बूंद कर जप करता था सोहम सोहम। का अर्थ क्या है, मैं वो हूं, यानी कि मैं भगवान हूं, सोहम सोहम बोल रहा। तो गुजरता हुआ एक वैष्णव वहां पर आ गया, तो वैष्णव ने देखा रे ये तुम क्या मंत्र जप कर रहे हो। बोला मैंने मेरे गुरु जी ने मंत्र दिया। अरे मैं दूसरा मंत्र, नहीं नहीं आपका मंत्र नहीं, मेरे गुरु का मंत्र ठीक है, मुझे आपका मंत्र नहीं चाहिए। तो वैष्णव ने कहा ठीक है मेरा मंत्र मत लो, लेकिन एक एक शब्द तो ले लो। बोला क्या, बोला केवल दास का शब्द जोड़ दो आपके मंत्र के आगे। बोला ठीक है। तो मंत्र को जप करते थे सोहम दासोहम दासोहम दासोहम। अब वो दासोहम दासोहम निकलने लग गया। अब जब दासोहम दासोहम निकलने लगा तो फिर वापस इनके गुरु जी आए। बोला ये क्या मंत्र जप कर रहे हो, मतलब तुम्हें सोहम दिया था। बोला हाँ लेकिन मेरा एक प्रिय मित्र था, मैं उसका मंत्र लेने के लिए जब मैंने उसको तिरस्कृत किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है दा का तो शब्द जोड़ लो, तो तब से मैं एक दा शब्द जोड़ लिया, दा तो कर रहा हूँ और कुछ नहीं, आदि का मंत्र है गुरु जी। ठीक है अभी आगे और एक मेरा भी शब्द और एक जोड़ लो, सर शब्द जोड़ लो। और तब से वो सदा सोहम जब करने लग गया, अब सदा सोहम बोलने लग गया। अब तो फिर वापस से वैष्णव घूमता हुआ आ गया। बोला ये क्या हो रहा है। बोला नहीं मेरे गुरु जी मुझे डांट दी है। बोले अब ये वर्ड आगे और एक जोड़ लो था, तब सदा सोहम बन गया, सदा सोहम। तो बोला ठीक है आप क्या करो उसके आगे और एक दा जोड़ लो। ठीक है दास दासो हम। अब वो ऐसा मंत्र चालू कर दिया कि अब तो ये जब करते करते पक्का दास बन गया। तो वैसे ये जो मायावादी का जो प्रस्ताव है कि हम सारे स्वामी हैं, ये वास्तविकता में सरासर गलत है। और इस सिद्धांत को अगर कोई अपने सामान्य बुद्धि से समझने का प्रयास करेगा तो बड़े आसानी से समझ जाएगा कि वास्तविक इसके पीछे कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति इस श्लोक को अगर समझ लेता है, न देवाहम जातु नासम न त्वम नियमे जनाति वा, ऐसा कभी नहीं हुआ है हे अर्जुन तुम नहीं रहे, ये समस्त राजा ऐसा नहीं हुआ कि ये नहीं रहा है, न चैवे न भविष्य और ना ही भविष्य में ये सब नहीं रहेंगे। सभी लोग भूतकाल में भी थे, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेंगे। इसका अर्थ क्या है, यू हैव इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आई हैव इंडिविजुअल आइडेंटिटी। जितने भी समस्त राजा है सबका अपना अपना एक अलग अस्तित्व है, पहचान है। तो सभी जीव आत्मा एक व्यष्टि आत्मा है और इसी बात की यहाँ पर पुष्टि होती है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो सभी के लिए प्रसाद होगा, कृपा करके प्रसाद दीजिए।
Yeah, but I'm probably...